जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम्। वेद विज्ञान का शिविर आज से प्रारंभ हुआ है। वस्तुतः वेद ज्ञान की चर्चा की मुख्यता वाला शिविर है। वेद ज्ञान का शिविर तो तब प्रारंभ होगा कहा जाए कि जब अपनी परिणति अंतर्मुख होकर परद्रव्य और परभावों से भिन्न और अपने गुण पर्यायों में अभिन्न अखंड अभेद ऐसे चैतन्य मात्र भाव को ग्रहण करे तो वास्तव में अपने जीवन में भेद ज्ञान का शिविर प्रारंभ हो गए। ये भी एक सुंदर प्रयोग है। सुबह आपको बताया गया था कि तीन शिविर हो चुके हैं मोना द्वारा और उसके विषय भी बताए गए थे। यहाँ हम लोग सब हमारे साथी भिन्न भिन्न ग्रंथों के आधार से अथवा भिन्न भिन्न बिंदुओं के आधार से भेद ज्ञान की ही चर्चा करेंगे ऐसा मानस बना करके सभी आए हैं। मुझसे जब ये इस विषय की चर्चा हुई तो प्रारंभ में तो बात ये हुई कि प्रमाण नए इससे कैसे भेद ज्ञान की सिद्धि होती है और वो जो एक लेख मैंने यहाँ एक बार पढ़ा भी था कि आत्मा का अनुभव करने के लिए चार तरह से जिनागम में कथन आते हैं उसको हम आधार बनाए। परंतु मुझे इस संबंध में ये विकल्प आया यदि हम प्रमाण नय के आधार से भेद ज्ञान की चर्चा करना चाहेंगे तो शायद भेद ज्ञान गौण हो जाए और प्रमाण नय की ही क्लास चल जाए। उपचरित असद्भूत व्यवहार स्त्री पुत्र इत्यादि को अपना कहता है। दादा ने तो सुबह थोड़ी झलक दिखाई दी थी। आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में एक गंभीर बात बड़े हल्के ढंग से आ गई लाइटली। हल्का मतलब स्टैंडर्ड लो नहीं, लाइटली आ गई कि व्यवहार पर खोटूं बोलवा माटे थे। ऐसा उसमें आया कि ये प्रदेश भिन्न है राग के और आत्मा के, तो बीच में शायद राम जी भाई ने कहा निश्चय से भिन्न है पर व्यवहार से तो एक ही है। तब गुरुदेव श्री का कमेंट था ये व्यवहार पण फूट बोलवा माटे छे। जो जो नए किसी भी पर वस्तु को अपना कहे समझ लेना वो संयोगी कथन मात्र है और हमें उससे अपने को भिन्न जानेंगे तभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। इस तरह संपूर्ण नए प्रमाण की व्यवस्था का फल वेद विज्ञान ही है। ये मुझे उससे ज्यादा महिमा नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी के जो छंद हैं, तो एक विचार आया कि गंभीर चर्चा गहरी चर्चा जिसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, विश्लेषण प्रधान होता है, उसका तो वातावरण आपको दिन भर मिलेगा। अभी तो शेरनी का रस जैसी चर्चा होवे तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आप उस पर मत जावेंगे, वो आपकी पुस्तिका में नए प्रमाण लिखा है। पहले हमने परमिशन ले ली थी यहाँ के आयोजकों से, रजनी भाई से, समर अधिकार में वेद ज्ञान के पोषक, वेद ज्ञान के प्रेरक, वेद ज्ञान की महिमा बताने वाले मात्र 11 छंद हैं। बहुत छोटा अधिकार है और उसमें 11 ही कलश हैं, तो 11 छंद हैं उसमें। तो इस तरह ये संवर अधिकार के कलशों के आधार पर अपन भेद ज्ञान का रसपान करें, ऐसा मन में निर्णय हुआ। आशा है आप सबको इसमें आनंद आएगा। और शायद यहाँ आ भी गया नहीं? हाँ। इसलिए आपको ग्रंथ का भी कोई विकल्प नहीं है। मैं संवर अधिकार के आधार से जो छंद हैं वो भी पढ़ूंगा। इसमें नीचे संस्कृत के भी होंगे, नीचे पेज के नीचे, हाँ ये भी पढ़ेंगे और ये हिंदी का भी पढ़ेंगे, पाठ का भी आनंद लेंगे और उसके अर्थ का भी आनंद लेंगे। सबसे पहले ऊपर जो प्रतिज्ञा की है बनारसी दास जी ने, आश्रव को अधिकार यह कयो यथावत जैन, अब संबर वर्णन करो सुनम भविक हरि प्रेम। वाह, देखो ये प्रतिज्ञा का छंद है। आश्रव को अधिकार कयो यथावत जैन, जैसा होना चाहिए, आश्रव का जैसा वर्णन होना चाहिए वो अधिकार हमने कहा। और हे भव्य जीवो, अब मैं संवर का वर्णन करता हूँ, जिसे प्रेम से सुनो। तत्प्रति प्रीति चित्ते, प्रेम से सुनने की बात है। अपन सब समय सार के रसिक हैं, यथा संभव उसके अभ्यासी हैं, इसलिए इस बात को तो अच्छी तरह जानते हैं कि समय सार का केंद्र बिंदु ही भेद विज्ञान है। आचार्य देव ने प्रतिज्ञा में ही ये बात कही है, पांचवी गाथा में, एकत्व विभक्त आत्मा की बात मैं तुम्हें बताऊंगा। एकत्व विभक्त क्या होता है? पर से जुदा एकत्व नहीं उपलब्धि केवल सुलभना, पर से भिन्न, पर में सब आगे, जहां से दृष्टि हटाना है वो पर। क्या बोला? जहां जहां से दृष्टि हटाना है, जिस जिसमें से अपनापन तोड़ना है, फिर चाहे वो अपनी सीमा में ही क्यों ना हो, हैं? अपन तो उसका भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा कर डालेंगे। एक बार योगेंद्र जी से चर्चा हो रही थी इस बात की, हम जब जयपुर में पढ़ते थे तो ये चर्चा तो बहुत चलती थी प्रदेश भिन्नता की। तो कमरे में हम सब विद्यार्थी बैठे थे और योगेंद्र जी से पूछा गया कि क्या चक्कर है, ये आत्मा में ही होता है तो फिर आप प्रदेश भिन्न कैसे कहते हो? योगेंद्र जी ने इतना सुंदर समाधान किया कि जो चीज भिन्न है तो वो पूरी ही भिन्न होती है, और पूरी भिन्न में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये चारों ही भिन्न होंगे तो भिन्नता की पूर्णता बनेगी, नहीं तो चार में से एक तो मेरा है बाकी तीन तेरे हैं, क्षेत्र मेरा है बाकी तीन तेरे हैं, ऐसे कैसे भेद विज्ञान होगा? इसलिए थोड़ा निर्मम होना चाहिए वेद ज्ञान के लिए ही, हैं? अरे वो तो अपनी पर्याय में होता है, अपन नहीं किया है, अरे एक ऐसी अद्भुत चीज अंदर त्रिकाल अखंड शुद्ध चैतन्य भाव विराजमान है, उसके सन्मुख परिणति हो गए तो रागादी के प्रति ममता पूरी तरह से टूट जाती। इस तरह एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाने के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई है। और जैसा कि इसमें कहा, हमने आश्रव का अधिकार कहा, तो आश्रव अधिकार में भी आखिर बात क्या है कि ज्ञानी निराश्रव होते। कोई आश्रव के भेदों की चर्चा की हो, आश्रव के कारणों की चर्चा की हो, ऐसा नहीं आया। ज्ञानी जो है वो निराश्रव होते, ज्ञानियों को आश्रव नहीं होता। यानी ज्ञानियों को, और ज्ञानी किसे कहते, जिसकी श्रुत ज्ञान परिणति में निरंतर भेद ज्ञान की अविरल धारा बहती रहती है, चाहे उदय भाव का कैसा भी नाटक होवे, संयोगों का कैसा भी नाटक होवे, जो अपने को सदा काल रंग राग और भेद से भिन्न ही अनुभव करते हैं, देखते हैं, वैसा अनुभव करते हैं श्रद्धा में, ज्ञान में, आंशिक लीनता में, वो भेद ज्ञान की धारा वो निरंतर चलती है। और ये संवर अधिकार तो मानो भेद ज्ञान का ही अधिकार है। आप देखिए, जो मोक्ष का मार्ग जो रत्नत्रय है, उस रत्नत्रय की धुरी, यूं कहा जाए कि रत्नत्रय का जन्म भेद विज्ञान से ही होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, सम्यक दर्शन में तो स्वरूप की निर्विकल्प प्रतीति को सम्यक कहते हैं, लेकिन आप जरा गहराई से विचार करें तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करने के लिए श्रद्धा गुण में कुछ नहीं करना पड़ता, ज्ञान में निर्णय होता है। कोडरमलिंगा तब तो निर्णय करो, ख्याल में है ना, निर्णय ज्ञान करता है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव किया जाता है। ज्ञाकार ज्ञान और सामान्य ज्ञान में भी भेद ज्ञान किया जाता है। ज्ञान की जो ज्ञाकार परिणति है, उसे आकारों की दृष्टि से देखें तो वो पर है, और उसमें चैतन्य उछलता है इस दृष्टि से देखें तो वो चैतन्य में ही है। गजब बात, आकार वो पर निमित्त से हुए हैं, पर जैसे हैं वैसा ही आकार पर का है, तो हमें पर का इतनी भी समानता बर्दाश्त नहीं है कि उस जैसा आकार हमारे ज्ञान में बने, तो हमने आकार से मोह तोड़ दिया, ज्ञान को रख लिया। बात समझ में आई? कल एक बात आई थी यहाँ चर्चा में, वो सिद्ध चक्र विधान की याद दिलाई थी मैंने, कि पहले जैसे अंग्रेजी जमाने के नाम थे सड़कों के, अस्पतालों के, रेलवे स्टेशन की गलियों के, तो क्या बिगाड़ते थे हमारा, लेकिन हमें उनका नाम भी पसंद नहीं आया, तो वहां नाम बदलते गए, धीरे धीरे बदल रहे हैं, और भी बदल गए, बहुत से बदल गए हैं। विक्टोरिया को हटा के छत्रपति शिवाजी को बिठा दिया हमने। वो बात मैं यहाँ क्यों कहना चाहता हूँ कि जो ज्ञान मात्र में जो चैतन्य की कल्लोलें उछलती हैं, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, उसमें ज्ञे पदार्थ जैसा आकार बनता है, तो आकार को दृष्टि में मुक्त किया जावे तो ज्ञे खड़ा हो जाता है, ज्ञे पर दृष्टि चली जाती, और उस आकार का जो उपादान है, उसका जो रॉ मटेरियल है, तो किससे बना है, उसमें किसकी सत्ता है, तो उसका उपादान भूत चैतन्य स्वभाव को देखा जा रहा है, तो गजब बात है। गेह से दृष्टि हटके और चैतन्य पर दृष्टि होती हुई व्यायक में दृष्टि चली जाती। कहने का आशय यह कि भेद ज्ञान की पराकाष्ठा, जिसमें गिराकार ज्ञान से भी भिन्न, उदाहरण तो कभी कभी व्याख्या करते भी है, बनारसी दास जी का छंद है, ज्ञायक गिराकार ममत्व निवारिक सो परमात्म सिद्ध नमो सिर नायक सिद्ध भगवान की स्थिति में ज्ञाकारों से ममत्व छोड़ करके एक ज्ञायक के प्रति ही अपनापन करके वो सिद्ध भगवान बने। हाँ चंद्र नाटक समय सार में ही है, पहले सबकी स्तुति लिखी है उन्होंने। इस तरह यहाँ तो समझ लीजिए हर लेवल का कथन है। और एक बात और मुझे दोपहर में विचार में आता था कि हम चर्चा करते हैं कि स्थूल भेद विज्ञान सूक्ष्म भेद विज्ञान ऐसी बात आती है और वो बिल्कुल अनुचित हो गए ऐसा तो नहीं है। बुद्धि के स्तर पे जब भेद ज्ञान समझाने की बात आती है पर से भिन्नता तो नेचुरल है कि ये मकान मेरा नहीं है ये बात समझना उतना कठिन तो नहीं है जितना राग मेरा नहीं है। समझ में आया ना? और फिर ज्ञाकार ज्ञान भी मैं नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, तो बात धीरे धीरे गहरी तो होती जाती है। अपने यहाँ 12 भावनाओं में भी उसका मूल केंद्र बिंदु भेद विज्ञान ही है। वास्तव में एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, अन्यत्व भावना ने देखो तुलना की है, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट हैं पर हैं परिजन लोए। मतलब देह को आधार बनाया कि जब देह ही मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, मेरी चीज नहीं है, तो जो देह से भिन्न है वो मेरे कैसे हो सकते हैं? तो वो उनसे भिन्नता की बात स्थूल हो गई और इधर देह से भिन्नता की बात उसकी अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म हो गई। भावना 32 में भी बढ़िया सन्नाटा है, क्या है वो, रोम तन तन से जिसका एक नहीं हो सुत प्रिय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह जहे रहे कैसे। चमड़े ही निकल गया तो रोम कहाँ रहेगा। इस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपन भेद ज्ञान की कई सीढ़ियां बना लेते हैं वो एक बुद्धि के स्तर पर समझने समझाने के लिए आवश्यक है। वही स्त्री का समागम बाद में हुआ और मृत्यु आने पर या तो हम छोड़ देंगे या वो छोड़ देंगे, कोई नहीं। अरे आजकल तो मृत्यु आने के पहले छोड़ दिया जाता है तो फिर बाहर उसकी तो रास्ता क्यों देखना। राग टूटा और द्वेष हुआ और समागम छूट गया है। हाँ देह भर आयु के अधीन है और देह से भिन्नता भी जगत में प्रत्यक्ष देखी ही जाती है, जीव कितने आते हैं जाते हैं। इस तरह से राग से भिन्नता, विकारी भावों से भिन्नता, ये सब बातें आती है। मैं इससे हटके कुछ दूसरी बात कहना चाहता हूँ और वो बात ये कि जिसे मान लीजिए मकान से भिन्नता का निर्णय करना है तो वो किस आधार पर होगा कि नहीं नहीं मकान मेरा नहीं है देह तो मेरी है। इस आधार पे क्या मकान से भिन्नता का निर्णय होगा? देह मेरी नहीं है लेकिन राग तो मेरा है, क्या इस आधार पर देह से भेद ज्ञान होगा? बहुत वर्ष पहले जब सोनगढ़ में पंच कल्याण हुआ था मैं तो समझता था आज दादा वो वाला प्रश्न करेंगे, लेकिन उनने थोड़ी धारा ही बदल दी। वो उसमें बहुत बढ़िया प्रश्न में परमानंद मंदिर के पंच कल्याण की बात है 1974 की। भेद ज्ञान में एक पार्टी अपना आत्मा होता है, एक और राम और एक और गाम, एक पार्टी मैं ज्ञाय स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा। तो मकान मेरा नहीं है तो उसके अपोजिट कौन खड़ा होगा? ज्ञाय। देह मैं नहीं हूँ तो उसके सामने कौन खड़ा होगा? ज्ञाय। यानी ज्ञाय स्वभाव चैतन्य स्वभाव चैतन्य के अवलंबन से ही समस्त पर पदार्थों और रागावी भावों और भेद इत्यादि जितने भी अपोजिशन में विपक्षी पार्टियां हैं उन सबसे भेद विज्ञान की कला स्वरूप के अवलंबन में ही समाई। इसलिए आज सुबह भाई साहब ने बहुत सुंदर संकेत किया भी था कि भेद ज्ञान में प्रयोग तो अभेद को पकड़ने का है, अभेद ज्ञान का है। ऐसी ऐसी सब बातें इसमें आएंगी। ये तो मंगला, ये तो प्रतिज्ञा है, सुनो भवे के धरी प्रेम। ये भेद ज्ञान की चर्चा इसे कोरी अध्यात्म चर्चा मात्र न समझकर, ये मेरे भव का अंत करने की विद्या है। कितनी महिमा आचार्यों ने गाई है। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट भेद ज्ञान की उपयोगिता का और क्या हो सकता है कि त्रिकालवर्ती जितने भी सिद्ध हैं, हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, ये सब भेद ज्ञान का ही प्रताप है। इससे बड़ी और भेद ज्ञान की क्या महिमा हो सकती। इसलिए भैया ये कथा को प्रेम सहित सुनना। और प्रेम कब पैदा होता है? जहाँ हित भाषित होता है वहाँ प्रेम होता है। बिजनेस वाले को जहाँ फायदे की बात हो गई वहाँ वो पूर्वक सुनता है। जहाँ अपना हित भाषित नहीं हो, सुख भाषित नहीं हो, तो वहाँ प्रेम भी नहीं उमड़ता है। तो सुनो, भविक धर प्रेम का मतलब है कि ये मेरे हित की बात है, ऐसा जान करके सुनो। ताई सुनो भवि मन फिर आन। कौन सी कंडीशन है? जो चाहो अपनो कल्याण। अपना कल्याण चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, शाश्वत सच्चा सुख, अविनाशी सुख प्रकट करना चाहते हो, तो ये बात सुनो। ये प्रतिज्ञा के बाद अब संबर को नमस्कार करते हैं। वो नीचे का छन्न निकालना, पहले वो पढ़ता हूँ। पहला नंबर दिया है संबर अधिकार का, पहला छंद है ये संबर अधिकार। बस ये मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, आप जिनको दिखता है वो सब रिपीट करेंगे। आ संसार विरोधी संबर जय कांतावले ताश्रव। न्यक्कारात् प्रतिलब्ध नित्य विजयम् संपादय संवरम्। न्यावृत्तं पररूपतो नियमितम् सम्यक् स्वरूपे पुर। ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरस प्राग्भारमोज्रम्भते। सभी एक साथ पढ़ेंगे। आत्म को अहित अध्यात्म रहित सो आश्रव महात्म अखंड अंजवत को हित कारगत ब्रह्म मंड को विकासी ब्रह्म मंड जाने सब रूप जो सब में सब रूप सोप सब नी संलिप्त आकाश खंडवत सोह ज्ञान भान सुख समर को भेष जाए ताकी रुचि रेख को हमारी।
कुछ भी हो, बनारसी लाल जी की काव्य कला बहुत गजब की है। इतना रस भरा है, एक तो विषय ही रस भरा है, संबर का विषय हो, भेद ज्ञान का विषय हो, अनुभूति का विषय हो, पर ऐसे विषयों पर काव्य में तो सहज ही रस प्रवाहित होता ही है। ये उनकी काव्य कला भी बहुत सुंदर। देखो, आत्मों को अहित अध्यात्म रहित ऐसो आश्रव, ये आश्रव का परिचय है। आश्रव निरोधो संवर होता है ना, आश्रव का विरोधी संबंध है। आश्रव यानी ये भी विचित्र बात है, जो राग द्वेष के परिणाम, ऐसे प्रश्न होता है प्रशिक्षण कक्षाओं में, भाव आश्रव और भाव बंध में क्या अंतर है? ठीक है, द्रव्य आश्रव द्रव्य बंध का तो क्लियर है, कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव, आत्म प्रदेशों से एक क्षेत्र बंध के रुक जाना वो द्रव्य बंध कर्मों का। अभी भाव आश्रव राग, यानी राग द्वेष में आत्मा का रुक जाना, अभी रुकने की फुर्सत कहाँ है उसको, वो राग द्वेष एक समय में तो चले जाने वाले हैं, रुकेगा कब, दूसरे समय नए आएंगे। उस फार्मूले से तो निरंतर भाव आश्रव ही होता रहता है, फिर भाव बंध कहाँ से होगा, बात समझ में आई, कब रुकेगा वो, दो समय ठहरे तो आत्मा अटक जाए उसमें। सोचने की बात है, तो वहाँ कक्षाओं में ये चर्चा आती, समाधान किया जाए, भैया निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक, निमित्तिक संबंध है ना, निमित्त नैमित्तिक, वो ही परिणाम में द्रव्य कर्मों को आकर्षित करे ऐसी योग्यता है, इसलिए उस परिणाम का नाम भाव आश्रव। द्रव्य आश्रव में निमित्त होने की योग्यता के कारण उसका नाम भाव आश्रव, और वो ही परिणाम में कितनी स्थिति लेकर के वो आएगा, कितना अनुभव लेकर के वो आएगा, ये चार प्रकार का जो बंध है ना, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभव, तो उसमें निमित्त कौन है, वो ही राग परिणाम, राग द्वेष कहो विकार कहो मोह राग द्वेष जो भी हो किरीट भाई, उसमें जैसे द्रव्य बंध के चार भेद हैं, यहाँ यहाँ चर्चा आ चुकी है एक बार देवलाली में, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग ये द्रव्य बंध के चार भेद हैं, तो वो तो समझ लो नैमित्त क्रिया कर्म की, उसमें निमित्त में भी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ऐसी प्रकृति आवे, इतने काल तक की आवे, इतने अनुभाग शक्ति वाली आवे, ख्याल में आए, इतने परमाणु आवे, वो योग्यता वो भाव परिणाम में है, इसलिए वो ही भाव बंध है। बात समझ में आई मथुरा लाल जी, उसमें ही वो योग्यता पड़ी हुई है, ये बात यहाँ क्यों कहीं जा रही है, फिर वो आश्रव उत्पन्न नहीं होना, रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम संवर है। तो आश्रव तो आत्मा का अहित करने वाला और अध्यात्म से रहित अनुभव से शून्य परिणाम, ये भी एक बहुत सुंदर और वस्तु परक दृष्टि। रागादि भाव ज्ञानी को ये मैं नहीं हूँ, ये पौद्गलिक परिणाम है, ऐसा भाषित होता है, तो अध्यात्म के जोर में ही भाषित होता होगा, नहीं साहब वो तो अध्यात्म के जोर में है तो मेरा, मगर अपन को भेद ज्ञान करना है ना, इसलिए उसको पर माना, ऐसा अंगूठी बांध करके पर माना जाता है। इसका एक बहुत सरल और सुंदर विज्ञान है, जिसको अपने स्वभाव में चैतन्य की धारा निरंतर बहती हुई अनुभव में आती है, उसको रागादि भाव पौद्गलिक है ऐसा भाषित होता है, ख्याल में आया। इसलिए उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, और ये समयसार ये बात सिखाने के लिए ही समयसार का जन्म हुआ है कि जो औपवादिक भाव शुभ भाव भी जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए ते भाव पर बंधनु कारण छे, बंधनु कारण इसलिए आश्रव छे, इसलिए वो धर्म नहीं है। तो चेतना शून्य परिणाम गजब है, आगम पद्धति से कहो तो चेतन में होता है। इसी समय साहब जी के 203 नंबर के कलश में भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है, काई होती ना काई जल में शैवाल बहतर गाथा में उदाहरण दिया है, तो वो पानी पर होती है, लेकिन जो तत्व पानी में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो तो काई में नहीं होते, तो पानी की छाती पर होने से वो कोई पानी से क्या मेल हो गया उसका, समझ में आया। इसी तरह से मोहराग्वेष के परिणाम स्वरूप का विरोध करने पर, स्वरूप को भूलने पर को अपना मानने पर इस अपराध के फल स्वरूप होते हैं। तो भले वो चैतन्य की जीव की पर्याय में हो, पर उसका जीवत्व से, उसका चेतना से, उसका ज्ञान से, उसका दर्शन से, उसका सुख से, उसका वीर से क्या संबंध है? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में है, ऐसे जो 47 शक्तियां या अनंत शक्तियां चेतन में है, वो उसमें थोड़ी चली जाएंगी। ऐसी अजब गजब की बात है। ये इसमें से आया, अध्यात्म रहित है, आत्मा के अनुभव से रहित, आत्मा को जानने से रहित, एवो आश्रव रूप महा अंधकार। मेरे पास जो गुजराती प्रति है, अखंड इंद्रानी जेम जगत ना बधा जीवों ने घेरी रहे छे। क्या उदाहरण दिया है। अंडवत जैसे गोलाकार होता है, अंडाकार वो वस्तु होती है, तो वो समझ लो राउंड, वो समझ लो उसने उतने स्पेस को घेर रखा है। ऐसे जगत के जीवों को ये आश्रव ने घेर रखा है। तेनो नाश करवाने माटे त्रण लोक मां फैलाता सूर्य जेवो जेनो प्रकाश सेवा। किसका? अरे जेमा सर्व पदार्थो प्रतिबिंबित थाए छे, अने पोते से बधा पदार्थो ना आकार रूप थाए छे, तो पण आकाश ना प्रदेश नी जेम तेम ना थी अलिप्त रहे। ये ज्ञान की कला तो अपनी एक भक्ति में आता है, ये झलकते हैं ज्ञान की कला में, तू ही तो ऐसा कलाकार है, सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ही ऐसा चमत्कार है। ये जरा ध्यान देने लायक, ये तो हो गया। ताको विस्तार गिल देखो प्रकट भयो, आश्रव का जितना भी साम्राज्य है उसको गिरवे को माने नष्ट करने के लिए, खा जाने के लिए, गड़ी जवाने माटे उसको नष्ट करने के लिए जिसका ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है, इसकी चर्चा है। ब्रह्म मंड को विकासी ब्रह्म मंड वत है। वाह, ब्रह्म माने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, उसका विकास यानी उसका प्रकाश, केवल ज्ञान प्रकाश हुआ, ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ है। त्रण लोक मां फैलाता सूर्य जेवो जेनो प्रकाश छे, अने जेमा सर्व पदार्थो प्रतिबिंबित थाय छे, अने पोते बधा पदार्थो ना आकार रूप थाय छे। नीचे है ज्ञायक गे आकार, फुटनोट में लिखा है नीचे इसने, अथवा ज्ञाकार ज्ञानी परिणति। ये 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 ऐसा एक पांचवे कलश में एक बात आती है, व्यवहार नये स्यात्। हाँ, इन्हीं निहित पदा नाम हंत हस्तावलम। मुझे यहाँ उसकी मजबूरी भाषित होती, वो ज्ञान में जो आकार बना है वो पूर्णतया ज्ञेयों से निरपेक्ष, अपनी योग्यता से, अपने कारण से, अपनी तत्समय की योग्यता से वो आकार उसने बनाया है, उसने प्रकट किया है। गेय से वास्तव में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो भी अपन बच नहीं सकते इस लैंग्वेज से कि गेय का आकार, गेय जैसा आकार। गुरुदेव ने बहुत कोशिश की तो गेय का आकार शब्द को अवॉइड किया, तो अभी गे संबंधी ज्ञान नो आता, तो गे संबंधी आया समझ में किरीट भाई? गे संबंधी क्या संबंध है? गे से क्या संबंध? गे उसका कर्ता है, गे उसका कर्म है, गे उसका करण है, गे उसका संप्रदान है। संबंध तो यही होता ना, छह कारक से ही तो कनेक्शन जुड़ेगा ना। तो क्या है संबंध? न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न अधिकरण। अब पाएगा संबंध छता बोलो उल्लास भाई है। गे संबंधी ऐसा कहना पड़ता है, इसने लिखा गृहकार ज्ञान की परिणति। इसलिए कभी मैंने वो दो पंक्तियां ही बनी, आगे उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, तो आगे कोई रचना बढ़ी नहीं आगे। बस इतना
गिरकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है, है? सुना देख ला जी, गिरकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है, ज्ञान में जो ज्ञान जाने वो ही भगवान है, आत्मा नादि से व्यायक है सुखदायक है। गिरकार ज्ञान में कलाकार कौन है, उसमें कला वे झलकते हैं ज्ञान की कला में, खरेखर तो ये झलकते हैं ये कहने व्यवहार है, उस ज्ञान के आकार को गिरकार कहना ये ज्ञान का पराश्रित निरूपण है, पराश्रित व्यवहार। वो आकार नहीं बनता है ऐसा नहीं, आकार है तभी तो इतनी कथा है। आकार बने ही नहीं तो एक होता है ना ज्ञान अद्वैतवादी, ज्ञान अद्वैतवाद हो जाए, एकांत हो जाए, तो ज्ञान में आकार तो बनता है, पर तो आकार का नाम क्या देना, वो आकार को गिरकार कहना ये असद्भूत व्यवहार नहीं का कथन है, है? देखो गिलास में पानी डाला तो पानी का आकार कैसा हो गया, गिलास के जैसा हो गया, तो पानी के आकार का परिचय ये कहे बिना नहीं दिया जा सकता कि वो गिलास के आकार का हो गया, लेकिन उसमें आकार पैदा कहाँ से हुआ, गिलास में से हुआ कि पानी ने स्वयं ने बना लिया, गिलास में से जाए अगर पानी में आकार तो गिलास निराकार हो जाए, यही है ना, गिलास का आकार पानी में चला जाए राजेश भाई तो गिलास निराकार हो जाएगा, लेकिन गिलास का आकार गिलास में है और पानी का आकार पानी में है, और दोनों में समानता देख करके वो गिलास का निमित्त देख करके कि ये गिलास का आकार हो गया, ऐसा कथन किए बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं। हंत हस्तावलंब, खेद है कि ऐसा हस्तावलंबन तुल्य ये व्यवहार का आलंबन लेना पड़ता, लोग व्यवहार में तो मन में एक विचार आया, आप लोग सोचना अभी नेक्स्ट अगर कोई सब्जेक्ट नहीं सोचा होगा तो नयों के ऊपर रखना चाहिए। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, जगत ये समझता है कि व्यवहार का आलम्बन लेना पड़ता है, माने अरे भैया अपन गृहस्थ हैं, अपन दिन रात असुम में डूबे रहते हैं तो पूजा पाठ तो करनी चाहिए, पूजा पाठ का आलम्बन लेना चाहिए, व्रतशील संयम पालना चाहिए। अरे वो कथा बिल्कुल दूसरे अध्याय की है, वो अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है और शुभ का आलम्बन लेना पड़ता है वो जुदी बात है, पर उसको व्यवहार में लगाना कि ये व्यवहार का आलम्बन है, इसमें क्या क्या व्यवहार का आलम्बन, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहना तो निश्चय और उसे अन्य द्रव्य की कहना तो व्यवहार। तो आपके पूजा में पाठ में भक्ति में दया में दान में व्रत में शील में सब में निश्चय व्यवहार दोनों लग जाए, उसका निरूपण करो आप, तो फिर व्यवहार का आलम्बन लेने का क्या अर्थ है, पराश्रित कथन करना। बात समझ में आई, व्यवहार का आलम्बन लेना पड़ता है, इसका असल मतलब क्या है, किसी भी भाव का या किसी भी वस्तु का, क्योंकि यहाँ आत्मा का प्रकरण है इसलिए विशेषतया आत्मा का पराश्रित निरूपण करना। अब आत्मा को मनुष्य है देव है नारकी है त्रेंच है स्त्री है पुरुष है ऐसा कहे बिना काम चलता नहीं, गुण स्थान वाला है मार्ग, ये है व्यवहार का आलम्बन कथन में वाणी में। और ज्ञानी उसी समय ये जानते हैं कि वास्तव में आत्मा ऐसा है नहीं। हमें तो सोनगर की वो बात याद है, राम जी भाई तीन बार कहलवाते थे एम छे नथी एम छे नथी एम छे नथी, जहाँ जहाँ व्यवहार में का कथन आवे सर्वथा नहीं ऐसा नहीं, परमार्थ स्वरूप ऐसा नहीं, तो ये गिरकार कहना तो एम छे नथी ऐसा हुआ। तो देखो ये इसमें से शब्द में से आया ना, जेमा सर्व पदार्थो प्रतिबिंबित थाय थे अने पोते से बधा पदार्थो ना आकार रूप थाय थे, तो पण आकाशना प्रदेशनी जेम तेमना थी अलिप्त रहे थे। वाह, इसमें छंद में है, जामे सब रूप जो सब में सब रूप सो, जामे सब रूप यानी जिसमें सब पदार्थों का आकार झलकता है, और जो सब में सब रूप और जो सब पदार्थों के रूप होता हुआ दिखाई पड़ता है, पे यानी छटा परंतु सबनी तो अलिप्त, गजब है, सबनी तो अलिप्त आकाश खंडवत है। ये क्या होता है, आकाश का स्पेस, स्पेस का एक समझ लो हिस्सा, ये है ना इतना हॉल, ये आकाश का हिस्सा है, हैं? ये किससे प्रभावित होता है बता, अपन सब इसमें बैठे हैं, इतने लोग इसमें समझ लो 250-300 आदमी इसमें बैठे, तो अपने उदय भाव का इस आकाश में क्या चला जाता है, हमारे राग द्वेष क्रोध अज्ञान, कोई सम्यक दृष्टि यहाँ आ जाए तो आकाश खुश हो जाएगा, हैं? मिथ्या दृष्टियों को देख के रोएगा कि यार कैसे लोग आ गए हमारे भीतर, क्या हो गया, बोलो आप क्या होगा उसका फर्क, किससे प्रभावित होता है, ये उदाहरण योग साल वगैरह में सब जगह आता है आकाश का, अलिप्तता बताने के लिए आकाश से बढ़िया और कोई उदाहरण है नहीं। छह द्रव्य जिसके पेट में रहते हैं, किस द्रव्य का गुण चला, एक तो आकाश तो वो स्वयं है ही, आकाश तो वो खुद ही है स्पेस, लेकिन धर्मास्त्री काय का, अधर्मास्त्री काय का, कालाणु का, जीव का, पुद्गल का, किसका उसमें गुण चला जाता, इसलिए सबसे अलिप्त रहता है। अरे अंधकार हो गए तो आकाश काला हो जाता, ये लाइट बंद कर दी जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद में जब प्रोग्राम हो जाएगा तो लाइट बंद हो जाएगी, तो जो स्पेस है ना स्पेस आकाश काली हो जाएगी, और यहाँ और बढ़िया लाइट लगा दी जाए, हेलोजन लगा दी जाए जो इससे 10 गुनी, तो ये क्या चमकदार हो जाएगा आकाश, क्या हो जाएगा, अलिप्त है। ऐसे लोकालोक संबंधी ज्ञान अपने में झलकता है, ज्ञान बनता है, लोकालोक झलकता है, जो कहा जा रहे, कहने की छूट है, कहने में कोई प्रतिबंध, कहे बिना काम चले नहीं, समझ मजबूरी है, तो भी ज्ञान तो आकाश की भांति अलिप्त रहता है। ये है भेद ज्ञान का केंद्र बिंदु, उसको नमस्कार किया है, सो है ज्ञान भान शुद्ध संवर को भेष धरे, ऐसा ज्ञान रूपी सूर्य शुद्ध संवर का भेष धर के आया, नाटक है ना नाटक समयता, ताकि रुचि भेद को हमारी दंडवत है, ऐसा ज्ञान रूपी सूर्य शुद्ध संवर के वेश में है, उसके प्रकाश को भेद ज्ञान के प्रकाश को, ज्ञान सूर्य के प्रकाश को हमारा नमस्कार। ये तो आचार्य अमृतचंद की खूबी है कि प्रत्येक अधिकार के प्रारंभ में उन्होंने ज्ञान ज्योति को नमस्कार करके मंगलाचरण किया है, और संवर अधिकार में तो ज्ञान ज्योति के प्रकट होने का नाम संवर अधिकार संवर है। देखो ज्ञान स्वभाव तो त्रकाल है, ज्ञान स्वभाव मात्र भेद ज्ञान नहीं है, वो तो ज्ञान मात्र है, वो तो मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, सब जीवों का चैतन्य स्वभाव, ये ज्ञान सूर्य निकला और वो प्रकट हुआ अनुभूति में है, उस अनुभूति रूप जो दशा है संवर की दशा, उसे मेरा नमस्कार हो, ऐसा कहके बनारसीदास जी ने मंगलाचरण किया है। ये आज एक छंद हुआ और आगे और भी छंदों का अपन आनंद लेंगे, अभी का समय भी हो गया है, इसलिए मैं यहीं विराम देता हूँ।